ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संघीय संसद का बजट अधिवेशन आज से हुआ शुरू। अधिवेशन कानून निर्माण और जनाकांक्षा संबोधन के विषयों में प्रभावकारी होगा, सभामुख खेमरे का विश्वास। शक्तिशाली गोरखा भूकंप के स्मरण में आज विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। भूकंपोत्तर पुनर्निर्माण में नेपाल ने असाधारण काम किया है, प्रधानमंत्री ओली का कथन। मेटा कंपनी को 7 दिन के अंदर सूचीकृत न होने पर बंद कर दिए जाने की संचार मंत्री गुरुंग ने दी चेतावनी। और कश्मीर हमले के बाद एक दूसरे के खिलाफ तने हुए भारत और पाकिस्तान को अधिकतम संयम अपनाने का संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। आवासीय चिकित्सकों द्वारा अस्पताल में ओपीडी सेवा बंद करने के कारण अस्पताल आए मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। निजी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों द्वारा सरकारी चिकित्सकों के समान भत्ता पाने की मांग को लेकर आंदोलन करने के कारण मरीजों की जान जोखिम में है। उनके आंदोलन में सरकारी चिकित्सकों ने भी एकजुटता दिखाई है। नेपाल चिकित्सक संघ ने एक विज्ञप्ति जारी कर सभी निजी और सरकारी अस्पतालों, क्लिनिकों, मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों के निदेशकों और चिकित्सकों को सेवा बंद करने का आह्वान किया था। संघ ने कहा है कि जब तक चिकित्सा शिक्षा आयोग का निर्णय लागू नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। संघीय संसद का बजट अधिवेशन आज से शुरू हुआ है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सभामुख देवराज खिमरे ने कहा कि ये अधिवेशन कानून निर्माण, जनता की आकांक्षा संबोधन लगायत विषयों में प्रभावकारी रहेगा। इस बात का जिक्र करते हुए कि कानून बनने में हुई देरी के कारण नागरिकों के मन में असंतुष्टि बढ़ गई है, सभामुख घिमरे ने विश्वास जताया कि इस अधिवेशन में पेश होने वाले सरकार की नीति तथा कार्यक्रम, बजट और अन्य विधेयकों के माध्यम से जनता की निराशाओं का समाधान होगा। बैठक में उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2081 पेश किया। बैठक में विभिन्न सांसदों ने लोकतंत्र से आए सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि देश में राजतंत्र की पुनःस्थापना की कोई संभावना नहीं है। साथ ही उन्होंने बजट के संबंध में विभिन्न सुझाव भी दिए। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक वैशाख 14 अगस्त रविवार के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक शोक प्रस्ताव पारित कर स्थगित हो गया। पूर्व मंत्री दीपक बोहरा के निधन पर सभाध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल द्वारा प्रस्तुत शोक प्रस्ताव सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित होने के साथ सभा स्थगित की गई थी। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक वैशाख 14 अगस्त रविवार दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। विक्रम संवत 2072 साल वैशाख 12 अगस्त आए विनाशकारी गोरखा भूकंप के स्मरण में आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर भूकंप स्मृति दिवस मनाया गया। 10 साल पहले गोरखा के बारपाक को केंद्र बिंदु बनाकर आए भूकंप में बड़े पैमाने पर जनधन की क्षति हुई थी। 7.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप ने 8,979 लोगों की जान ले ली थी, जबकि 22,309 लोग घायल हुए थे। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण द्वारा गोरखा भूकंप के 10वें स्मृति दिवस के अवसर पर आज धरहरा परिसर में आयोजित सभा को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता आवास कार्यक्रम अंतर्गत सुरक्षित एकीकृत बस्ती निर्माण के लिए कानून निर्माण करके आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री ओली ने आगे कहा कि भूकंप में पुरातात्विक और ऐतिहासिक धरहरा लगायत लाखों संरचनाएं ध्वस्त होने के हालात में नेपाल ने पुनर्निर्माण के क्षेत्र में असाधारण काम किया है। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने गोरखा के विकास और गोरखा की जनता के सुख दुख के प्रति सदैव समर्पित रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। गोरखा भूकंप के केंद्र बिंदु बारपाक सुलीकोट गांवपालिका वार्ड नंबर 2 में आज आयोजित भूकंप स्मृति दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि गोरखा के विकास और निर्माण के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सारे संभव प्रयास और पहल किए जा रहे हैं। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम सहित अन्य प्लेटफॉर्म्स की मूल कंपनी मेटा को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 7 दिन के भीतर कंपनी नेपाल में पंजीकृत नहीं हुई तो इन सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा। आज राष्ट्रीय सूचना आयोग द्वारा आयोजित सूचना के अधिकार संबंधी एक अंतर क्रियात्मक कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने बताया कि मेटा को 3 बार पत्र लिखकर पंजीकरण करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कंपनी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अगले 7 दिनों के भीतर पंजीकरण नहीं हुआ तो इन प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में बंद कर दिया जाएगा। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री डॉ आजू राणा देववा ने सरकार परिवर्तन की चर्चा को महज अफवाह बताया है। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में भाग लेकर आज स्वदेश लौटने के बाद विमानस्थल पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ कुछ लोगों की अटकलें हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पिछले एक वर्ष की अवधि में कर्णाली प्रदेश के 13,35,000 लोगों ने स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त की हैं। प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में ये बताया गया है कि प्रदेश के सभी 10 जिलों के विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों से नागरिकों ने विविध सेवाएं प्राप्त की हैं। पहले जहां कर्णाली के निवासियों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच नहीं थी, वहीं अब गांव-गांव में अस्पताल पहुंचने से स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ी है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि कर्णाली को एक ऐसे प्रदेश के रूप में देखा जाता था जहां लोगों को साधारण पैरासिटामोल भी नसीब नहीं होता था, लेकिन अब सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित हो गई है। लुम्बिनी में कल से 4th अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक फेस्टिवल एवं सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार के संयोजक डॉ सागर न्यूपाने ने बताया कि ये सेमिनार बौद्ध संस्कृति, चीनी संस्कृति, कला, पारंपरिक बौद्ध चिकित्सा और बौद्ध शिक्षा पर केंद्रित होगा, जिसमें 40 कार्यपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इससे पहले पहला, दूसरा और तीसरा सांस्कृतिक फेस्टिवल क्रमशः कंबोडिया, श्रीलंका और थाईलैंड में आयोजित किए गए थे। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से ज्यादा संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि पिछले 24 घंटों में महासचिव का किसी भी सरकार के साथ सीधा संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन वे चिंता के साथ स्थिति पर नजर रख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले की निंदा की। यूएन ने कहा कि दोनों देशों को अधिकतम संयम बरतना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों देशों के बीच स्थिति और ज्यादा न बिगड़े। हमारा मानना है कि पाकिस्तान और भारत के बीच किसी भी मुद्दे को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है, उन्होंने कहा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते मंगलवार को चरमपंथी हमला हुआ था। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक नेपाली नागरिक शामिल था। मारे गए लोगों में ज्यादातर पर्यटक थे। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बहराइच में आज राइस मिल में आग लगने के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बहराइच के दरगाह चौकी इलाके में स्थित राइस मिल में सुबह आग लग गई। आग को बुझाने पहुंचे 8 मजदूर जहरीले धुएं की चपेट में आ गए, जिससे 5 की दम घुटने से मौत हो गई। ये जानकारी के मुताबिक मिल के ऊपरी हिस्से में आग लगी थी। घायलों का हाल जानने पहुंची जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि राइस मिल में मजदूर धान को सुखाने का काम कर रहे थे। उनके मुताबिक प्राथमिक जांच में पता चला है कि धान की नमी को सुखाने वाली मशीन में आग लग गई थी, जिसके कारण धुएं से दम घुटने से 5 मजदूरों की मृत्यु हो गई। मरने वालों में 3 कन्नौज, 1 बिहार और 1 श्रावस्ती के रहने वाले श्रमिक हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संघीय संसद का बजट अधिवेशन आज से हुआ शुरू। अधिवेशन कानून निर्माण और जनआकांक्षा संबोधन के विषयों में प्रभावकारी होगा, सभामुख घिमिरे का विश्वास। शक्तिशाली गोरखा भूकंप के स्मरण में आज विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। भूकंपोत्तर पुनः निर्माण में नेपाल ने असाधारण काम किया है, प्रधानमंत्री ओली का कथन। मेटा कंपनी को 7 दिन के अंदर सूचीकृत न होने पर बंद कर दिए जाने की संचार मंत्री गुरुंग ने दी चेतावनी। और कश्मीर हमले के बाद एक दूसरे के खिलाफ तने हुए भारत और पाकिस्तान को अधिकतम संयम अपनाने का संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया आग्रह। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।